रात में क्लास चल रहा था 28/11/1967 पहले पेज की चौथी पांचवी लाइन में बात चल रही थी, जो भारत डूबा हुआ है उसको तुम सेल्वेज करते हो, तुम सेल्वेशन आर्मी हो, रूहानी सेना भारत को फिर ऊपर उठाते हो। जिस मानी सेना वालों ने भारत को नीचे गिराया और तुम रूहानी सेना, रूह माने बीज, कहे का बीज, सभी आत्माओं का बीज है। तो तुम जो बीज रूप आत्माएं हो उनका भी कोई बाप है ना, कौन है, कोई शिव सुप्रीम सोल, हेवनली गॉड फादर, जो आकर के तुम बच्चों को सृष्टि के आदि में सौ आत्मिक स्टेज में स्थिर कराया था और फिर द्वैतवादी द्वापर युग से तुम क्या बन गए है? दे अभिमानी आर्मी के साथ क्या बन गए, हिंसक बन गए कि अहिंसक बन गए, हिंसक बन गए। तो हिंसा करने वाली इंद्रिया ही होती है, कौन सी इंद्रिय सबसे जास्ती हिंसा करने वाली है? दुनिया वाले तो कहेंगे हाथ पांव से हिंसा होती है, है? कहेंगे हाथ पांव इंद्रियों को भी कंट्रोल करने वाला मन है, बुद्धि है, मन बुद्धि से जो एटम बम बनाते हैं वो बड़े पावरफुल है। बाप कहते हैं नहीं, मन कोई ऐसी इंद्रिय नहीं है जो देह अभिमान की इंद्रिय कही जाए, नहीं वो तो सूक्ष्म इंद्रिय है। जिन इंद्रियों में देह होती है उसको कहेंगे देह वाली इंद्रिय। तो उनमें बाप कहते हैं क्या, कौन सी इंद्रिय, काम इंद्रिय जो है वो सबसे जास्ती पावरफुल हो जाती है। कब, जब देवात्मा कमजोर बन जाते हैं, द्वैतवादी द्वापर युग से आठ कला से नीचे उतर जाते हैं। तो उनके संग के रंग से तुम जो सृष्टि की सारी मनुष्य सृष्टि की बीज रूप आत्माएं हो वो तेजी से नीचे उतरती है, क्यों, बीज जब धरणी में डाला जाता है देह अभिमान की धरणी में तो बीज रह जाता है या सड़ जाता है, सड़ जाता है, अपने अस्तित्व को खत्म कर देता है, खत्म कर देता है कि सार रूप में रहता है, बीज कभी खत्म नहीं होता। भले धरणी में देखने में आता है कि खाक में मिल गया, परंतु उससे जो पौधा तैयार हुआ ना, अंकुर निकला ना, उस अंकुर में वो बीज समाया, अंकुर से फिर जड़ें भी निकलती है, उन जड़ों में भी उसकी शक्ति है। तो वो तो बीज रूप बाप है ना, वो मनुष्य सृष्टि रूपी जितना परिवार है उस परिवार के जितने भी भांति हैं चाहे पहले जन्म लेने वाले और चाहे बाद में जन्म लेने वाले, उन सब में उस बीज बाप की है शक्ति है या नहीं है? है समाई हुई है, सार रूप में समाई हुई है। तो उस सारे वृक्ष से वो मिलकर रहता है या डिटैच होकर रहता है? बताया ना, सूर्य एक होता है ओरिजिनल सूर्य और दूसरा है डुप्लीकेट। तो ये कैसा सूर्य है? है डिटैच होने वाला है या सदा अटैच रहने वाला है? है अटैच रहने वाला, प्रवृत्ति मार्ग का पक्का है। प्रवृत्ति मार्ग माने प्रवृत्ति में क्या होता है? ऐसे नहीं पति पत्नी ही होते हैं, बाल बच्चे भी प्रवृत्ति में गाए जाते हैं कि नहीं? हाँ। तो जितने भी परिवार में संबंधी हैं वो सब प्रवृत्ति है, सब के साथ निभाने वाला है या प्रवृत्ति तोड़ने वाला है? निभाने वाला। तो बताया प्रवृत्ति में रहेंगे तो संघ के रंग में आना पड़ेगा ना। हाँ। तो तुम बीज रूप आत्मा है जो बाप समान हो, कौन से बाप समान है? आ शिव सुप्रीम सोल, उसके समान तो सिर्फ एक ही बनता है, बाकी तुम नंबरवार तो हो सब। तो जो भी आत्मा है बीज रूप नंबरवार हो, जिन्हें रुद्र माला के मणकों के रूप में दिखाया जाता है, छोटी सी छोटी माला आठ की और फिर उससे फर्स्ट क्लास माला कही जाती है 108 की, फिर बड़े की बड़ी माला है कितनी 500-700 करोड़ की माला, उसमें सभी मनुष्य आत्मा आ जाते। तो बताया उन सब बीजों में जो सर्वे पर बीज था वो सबसे नीचे जाता है, संग के रंग में आते आते प्रवृत्ति को निभाते निभाते है संघ के रंग से नीचे गिरेगा या ऊपर चढ़ेगा? हाँ नीचे आता। तो विदेशी धर्म पिताएं जब से आते हैं तो तब से ही ये गिरावट जास्ती शुरू होती है। क्यों? क्योंकि उन विधर्मी धर्म पिताओं की है कौन सी आर्मी है? जिस्मानी आर्मी। और तुम्हारी थी जो बाप ने आके स्थापन की रूहानी आर्मी, और वो रूहानी आर्मी क्या रूह निकल जाती है? है चारों युगों में रहती है, चारों युगों में रहती है। हाँ ये है, कोई बीजों में वो रूह ज्यादा पावर में रहती है और कोई में कम पावर में रहती है, नंबर वार तो होते ही। तो बताया कि जो आत्माएं बीज रूप बिल्कुल सृष्टि के अंत में बीज रूप जो आने वाले धर्म हैं उनमें काम करती है, उनका बीज रूप बनने का। सबसे लास्ट में कौन सा है? किसे कहेंगे? है कितनी देर एक अक्षर लिखा जाता है? हाँ नास्तिक, उनको धर्म नहीं कहेंगे क्योंकि वो तो कोई धारणा को मानते ही नहीं। क्या आत्मा को मानते? नहीं। परमात्मा को मानते? नहीं। और परमात्मा को भी परमात्मा परम पार्टधारी हीरो पार्टधारी आत्मा बनाने वाले को जानते? न निराकार को मानते न साकार को मानते। और जो बनाने वाला बनाता है देवी देवता सनातन धर्म को, न उन देवताओं को मानते, न देवताओं को मानते। तो स्वर्ग को मानते हैं? तो स्वर्ग को भी नहीं मानते, स्वर्ग को भी नहीं मानते, नरक को भी नहीं मानते, कोई धारणा को नहीं मानते। बस क्या मानते हैं? देह और देह का सुख, देह की इंद्रियों का सुख ही सबसे बड़ा सुख है। तो वो आत्माएं सबसे लास्ट में आने वाली है ना। तो जो नास्तिक धर्म की आत्माएं आत्मलोक से सबसे बाद में उतरती हैं, उनके भी तुम बीज हो। क्या उनके भी बाप हो या नहीं बाप हो? उनके भी तुम बाप। तो बताया कि तुम उनके बाप हो, तो जो काम बच्चे नहीं कर पाएंगे नास्तिक धर्म वाले, वो काम तुम करके दिखाओगे कि नहीं? क्या काम? वो बच्चे जो हैं, हाँ बनाते तो हैं खिलौने, कौन से एटम बम होंगे, लेकिन उनमें ये दम नहीं रहती है कि वो उनको फोड़ दे। तो तुम बच्चे क्या करते हो? तुम बीज रूप आत्मा है, हाँ बाप हो ना, तो क्या करते हो? तुम उनमें प्रवेश करके बीज रूप स्टेज में उनकी बुद्धि को घुमाया देते और उनसे विनाश का काम संपन्न करा देते। तो बताया उस समय सारी दुनिया अज्ञान के जल में उन एटम बमों के विस्फोट से क्या हो जाती है? डूब जाती है या बच जाती है? सारी बीज रूप आत्माएं जो है वो ही बचती है। क्यों बचती है? क्योंकि वो हल्की फुल्की बीज रूप पहले बन जाती है। बीज हल्का होता है ना, हाँ कोई बीज बहुत छोटा होता है, कोई बीज बड़ा होता है। तो छोटे में छोटा बीज होता है कि नहीं? कोई है? अरे है कि नहीं? कोई वृक्ष है जिसका बीज बहुत छोटा लेकिन वृक्ष बहुत बड़ा, वो कौन सा है? एक अक्षर लिखो, देर नहीं, बरगद है, पीपल। अच्छा पीपल नहीं, बरगद कहते हैं उसे, बड़ा बड़ा माने बड़ा, उसे बटवृक्ष भी कहते हैं। तो वो जो बरगद का पेड़ है वो बहुत बड़ा होता है और बीज बहुत छोटा। ऐसे तो ऐसे भी बीज हैं जो बीज छोटे तो होते हैं लेकिन उनका पौधा या वृक्ष उतना बड़ा नहीं। जैसे खस है, खस का बीज बहुत छोटा लेकिन पौधा बड़ा होता है? नहीं होता है, नहीं पौधा छोटा ही होता है। तो बताया तुम उस बीज रूप बाप के डायरेक्ट बच्चे हो। क्या कहा? डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो? डायरेक्ट बच्चे। तो तुम्हारे में ताकत तो ज्यादा है ना, भले लास्ट में आने डाले धर्म के बीज रूप आत्माएं हो, उनके बीज रूप बाप हो, तो भी तुम्हारे में सबसे जास्ती शक्ति है, सब धर्मों के मुकाबले कि कम है, जास्ती शक्ति। तो बताया तुम भी चढ़ती कला में पहले पहले जाते हो संसार में या बाद में जाते हो? दुनिया वालों के मुकाबले तो पहले ही बीज रूप आत्माएं जाएंगी ना, बीज छोटा होता है। बोले छोटे पौधों का बीज हो या बड़े पौधों का बीज हो, हल्का तो होगा ना। तो सबसे बीज रूप हल्के रूप तुम्हारा क्या बनता है? क्या बनता है? आत्मा। आत्मा हल्की बनती है ना, तो जो हल्की चीज होती है वो फिर जल में ऊपर रहेगी या नीचे डूबेगी? ऊपर। तो तुम तारु बन जाते हो, तैरने वाले। क्या? जैसे नदी में नाव डूबती है ना, तो जो नाव खेने वाले होते हैं ना, छिबैया क्या कहते हैं उनको, नाविक। हाँ, तो नाव में बैठने वाले बहुतों को बचा लेते हैं, बताते हैं, बचाते ही नहीं। हाँ, खुद भी तैरते हैं और तैर करके दूसरों को भी पार पार लगाते हैं। तो तुम बच्चे हो है ऐसी डूबने वाले या तैर करके पार जाने वाले। बोले कितनी भी दुनिया में जलमयी हो जाए लेकिन तुम उस जलमयी में तैरते तैरते कहाँ पहुंच जाएंगे, वहां पहुंच जाएंगे जिसे कहते हैं हिमालय पर्वत। दुनिया में सबसे ऊंचे से ऊंचा पर्वत कौन सा है, हिमालय पर्वत ऊंचा है। तो चैतन्य के पास पहुंचेंगे या जड़ हिमालय के पास पहुंचेंगे, चैतन्य के पास पहुंचेंगे। चैतन्य हिमालय कौन है, है? वो चार मुखों वाला जो ब्रह्मा है ना, वो है हिमवान, हिमालय कहा जाता है। हिमालय नाम क्यों लिया, हिमवान बर्फ ही बर्फ वाला है, उसमें बर्फ ही बर्फ जमी है, माना बर्फ उसके ऊपर के हिस्से में जमी रहती है या उसके अंदर जमी रहती है, ऊपर माना ऊपर क्या होता है, मूर्धा होती है ना, सर होता है ना। तो उसके सर में जब बर्फ जमी हुई है तो बुद्धि चालू रहेगी या जाम हो जाएगी, बुद्धि चालू नहीं रह पाती है, जाम बुद्धि रहती है। तो वो हिमालय हिमवान कहा जाता है, माने मस्तक में उस चैतन्य आत्मा को मनन चिंतन मंथन चलता है, नहीं चल पाता है। लेकिन उस हिमालय में भी अनेक चोटियां हैं या एक चोटी वाला है, अनेक चोटियां। तो तुम सब हो चोटी वाले ब्राह्मण के चोटी के बच्चे, क्या ऊंची ऊंची चोटियां हो ना, ऊंची स्टेज में रहते हो या नीची स्टेज में, देवान की स्टेज में रहते हो, नीची स्टेज में। तो जलमयी ऐसे थोड़े ही है कि हिमालय पहाड़ तक ही रहेगी या चोटियों तक ही रहेगी, जलमयी में तो सारा संसार डूब जाता है। क्या बचता है, एक एवरेस्ट चोटी बचती है, एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी दुनिया की, वो है तुम ऊंचे से ऊंची चोटी बाप ब्राह्मण चोटी के बच्चे। कौन चोटी हुई, एवरेस्ट। एवरेस्ट माने ईस्ट माने पूर्वी सभ्यता को फॉलो करने वाला, पूर्वी सभ्यता का स्थापन करने वाला। पूर्वी सभ्यता में कौन सा धर्म स्थापन होता है, देवी देवता सनातन धर्म, उसका बीज पूर्व में दिखाया जाता है या पश्चिम में, दक्षिण में, उत्तर में, पूर्व में दिखाया जाता है। कौन सा है, कहते हैं उसकी यादगार कलकत्ते में है, वही बनी एंट्री। वो बीज रूप आत्मा जो है उसको कहेंगे भारत। वो क्यों बचता है, बा माने ज्ञान की रोशनी, रत माने लगा रहने वाले। जो लगातार ज्ञान की रोशनी में लगा रहेगा है, ऊंचा काम करेगा या नीचे काम हुआ, ऊंचा काम हुआ। क्योंकि ज्ञान की रोशनी में लगा रहना तो मन बुद्धि का काम है ना, इंद्रियों का काम है, ज्ञान इंद्रियों का या कर्म इंद्रियों का नहीं। तो मन बुद्धि का ऊंचे से ऊंचा जो कार्य है उसको दिखाते हैं। दुनिया में ऊंचे से ऊंचे देवताएं कही जाती हैं, तीन देवताएं ब्रह्मा विष्णु शंकर। तो उनमें ब्रह्मा की पुरी है, विष्णु की पुरी है उससे ऊपर शंकर की पुरी, जगत पिता की पुरी। तो वो जगत पिता जो है ऊंचे से ऊंचा मनन चिंतन मंथन करने वाला हुआ ना है, तो तब वो कौन सा टाइम है, वो ही पुरुषोत्तम संगम, क्योंकि जब बाप आते हैं, कौन सा बाप, वो ही सुप्रीम बाप जिसका कोई बाप ही नहीं, तो उस समय वो ऊंचे से ऊंची चोटी बनती है, क्या ब्राह्मण चोटी है, उस ऊंची से ऊंची चोटी बाप के तुम बच्चे, तो जो जितना ऊंचा चढ़ता है सृष्टि का नियम क्या है, वो उतना नीचे भी नीचे भी। तो सृष्टि के आज में सबसे ऊंची चोटी और सृष्टि के अंत में एकदम डूब जाता है, क्या तो भारत की कलयुग के अंत में क्या हो जाती है, चढ़ती कला या उतरती कला, उतरती कला हो जाती है। तो तुम बच्चे क्या करते हो, उस भारत को जो सबसे नीची डूबती कला में आ गया, तुम क्या करते हो, संगठन की शक्ति से संगठन बनता है ना, तुम्हारा माला बनती है, माला माने संगठन, तो जब तुम्हारी माला बन जाती है तो पूरी माला तुम बीज रूप आत्माओं की रुद्राक्ष के मणकों की तैयार होती है, तो तुम दुनिया की सबसे पावरफुल संगठन वाली आत्माएं माला के रूप में सुशोभित हो जाती है संसार में। तो तुम्हारी भी उड़ती कला होती है और भारत की भी उड़ती कला, ऊर्ध्वमुखी बन जाता है। तो देखो तुम चढ़ती कला में भारत को ले आते हो, नहीं तो उड़ती कला तो है ना, और डूबती कला इसको कहेंगे, किसको किसको डूबती कला कहेंगे, इसको की तरफ, इसको कहा तो किसकी तरफ इशारा किया है, हाँ जो अधोमुखी है ना, जिसकी बुद्धि बच्चों में जाती है, क्यों, ब्रह्मा नामधारी है ना, तो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जितने भी हैं, प्राणी हो मनुष्य हो देवात्माएं हो राक्षसी आत्मा है, सबका संबंध क्या है उस ब्रह्मा के साथ, वर्षा देने वाला बाप है, जन्म देने वाला बीज बोने वाला बाप है या माँ है, माँ है, माँ से वर्षा, माँ से वर्षा तो मिलता नहीं है, हाँ ये है कि माँ मोह में आकर के बच्चों के अपना वर्षा भी बच्चों को अर्पण कर देती, अपना सारा सुख बच्चों को दे देती, क्या माँ बच्चों का दुख देखती है क्या, कैसी टेंडेंसी होती है माँ में, खुद दुख सहन करेगी और बच्चों को सुख में देगी, तो वो माँ का जो पार्ट है जिसमें सारी सृष्टि उसके पेट में है समाई हुई है, कौन दादा लिख रहा है, उसके बुद्ध रूपी पेट में से वो मान की सृष्टि निकलती है 500-700 करोड़ मनुष्य आत्मा की, मानसी सृष्टि बनती है ना, है तो सब प्रकार के जीव जंतु सब प्रकार की आत्माएं। तो कलयुग के अंत में जब सुप्रीम सोल बाप आते हैं तो बताया ये सबसे जाती नीची स्टेज में जाता रहता है, कौन बच्चों के मोह में आकर, कौन ब्रह्मा, तो इसको कहेंगे डूबती कला। तो ऐसे बच्चों को फकुर होना चाहिए ना, कैसे बच्चों को, जो लगातार चढ़ती कला में जाते हैं और सबको चढ़ती कला में जाते, पहले किसको ले आएंगे, बच्चों का फर्ज क्या है, पहले किसको चढ़ती कला में ले जाएं और बाप का फर्ज क्या है? जो मनुष्य सृष्टि का बाप है उसका फर्ज क्या है? पहले किसका उद्धार करे? माताओं का उद्धार। बाप ने क्या किया? सुप्रीम सोल बाप आकर क्या करते हैं? वो भी तो माताओं को महत्व देते हैं ना, पहले प्रेफरेंस देते हैं। तो जो बाप का बच्चा होगा फॉलोअर सच्चा सच्चा, वो भी क्या करेगा? वो भी माताओं को प्रेफरेंस देगा ना। तो तुम बच्चे ये फख्र होना चाहिए कि हम सब डूबती वालों को, डूबती कला वालों को ऊपर लाने वाले हैं, नंबर वन। तो क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को देख करके भी तो फख्र जरूर होना चाहिए। क्या है तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट? है जो भी डूबे हुए हैं इस दुनिया में, सबसे पहले किसने डूबना शुरू किया इस दुनिया में? अरे बताओ, कोई आत्मा है जिसने? पृथ्वी पिता ने डूबना शुरू किया। अच्छा, वो पहले डूब जाता है, द्वापर युग का भी इंतजार नहीं करता, सतयुग के आदि से ही डूब जाता है। ब्रह्मा कौन सा ब्रह्मा? चौमुखी ब्रह्मा। चार मुखों वाला संगठन बनाने वाला ब्रह्मा। तो जिसने चार मुखों का संगठन बना लिया है, तो वो तो मुखिया हो गया, हो गया ना। लेकिन दूसरे जो तीन मुख हैं जुड़े हुए उसके साथ, वो उससे ज्यादा पावरफुल होंगे या कम पावरफुल होंगे? है ज्यादा होंगे, कम पावरफुल। तो बच्चे समझते हैं जो चार मुखों वाला ब्रह्मा है वो दादा लेख रहा है, जिसने साक्षात्कार किए। तो साक्षात्कार करने वाला बड़ा हो गया कि ज्ञान वाला बड़ा हो गया? बड़ा किसको होना चाहिए? ज्ञानी को बड़ा होना चाहिए ना। तो बाप कहते हैं मैं जब आता हूं तो ज्ञानी बच्चों के बीच में आता हूं, ज्ञानियों के बीच में पहले आता हूं, तीन मूर्तियों के बीच में आता हूं। वो तीन मूर्तियां कैसी होंगी? है ज्ञानी तो आत्माएं होंगी ना। ये है कोई सबसे ऊंचा जैसे शंकर पूरी दिखाई जाती, कोई न्यूट्रल बीच में जैसे वैष्णवी देवी, और फिर कोई नीचे, कौन नीचे? तीसरी। तीन मूर्तियों के बीच में आता हूं तो तीसरी मूर्ति कौन नीचे? जो सबकी अम्मा है, जिसको कहते हैं जगदम्बा। तो जगदम्बा में कौन, जगदम्बा ने कौन सी युग में पार्ट बजाया होगा? प्रैक्टिकल पार्ट बजाया होगा ना। नाम क्या है उस युग का? पुरुषोत्तम संघ। तो पुरुषोत्तम संगम युग में जो सारे जगत की अम्बा है, स्त्री चोलाधारी है कि पुरुष चोलाधारी? स्त्री चोलाधारी तो है, लेकिन उसके अंदर संस्कार जन्म जन्मांतर के क्या पुरुष रूप भी हैं या नहीं है? क्योंकि मैं ज्ञान की तीक्ष्णता में ज्यादा जाने वाले हैं, ज्यादा ज्ञान को पकड़ते हैं, सुनते भी हैं, सुनाते भी हैं, समझते भी हैं, समझाते भी हैं। पुरुष रूप आत्माओं को पकड़ता हूं जो पुरुषों का जन्म ज्यादा लेती है, या जो आधारमूर्त माताओं का जन्म लेती है ज्यादा, उनमें आता हूँ, उनके बीच में आता हूँ, किस में आता हूँ तो बीज रूप आत्माओं में आता हूँ, लेकिन बीज रूप में भी तो पुरुष चोलाधारी तो नहीं है, लेकिन संस्कार अरे स्वभाव संस्कार से क्या है, जन्म जन्मांतर कैसी आत्मा है पुरुष, तो उनमें एक है अब्बल लंबर है, कैसा पुरुष, षष्ठी रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाला प्रथम पुरुष, क्या कहते हैं, हीरो पार्टधारी, जगत पिता, और फिर उसके साथ माता भी जगत माता, जगत माता माने सबकी माता है या किसी की माता नहीं, सबकी माता, अच्छा जगत पिता की भी माता है, हाँ क्योंकि जगत पिता नहीं तो कहां से आएगा है? तो बताया कि शिव बाप जब आते हैं तो वो तो प्रवृत्ति बनाने के लिए आते हैं, तो प्रवृत्ति में ही आते हैं, तो ये दो आत्माओं की मन बुद्धि से भी और देह के संबंध से भी प्रवृत्ति बन जाती है, क्या कलयुग अंत में लास्ट जन्म में कौन सी आत्मा, वो ही बड़ बोली माता है, बोल बोल ज्यादा करती, और उसको कहते हैं वाक देवी है ना, हाँ वाचा की देवी, मुख से क्या निकलता है, उसके मुख से वाणी निकलती है ना, शब्द निकलता है ना, तो वो शब्द ब्रह्म जिसे कहा जाता है, तो पहला पहला शब्द ब्रह्म है, दो में साथ साथ प्रवेश करते हैं, जैसे प्रवृत्ति चलाई जाती है, परिवार बनता है तो स्त्री पुरुष दोनों मिलकर के प्रवृत्ति शुरू करते हैं कि एक करता है एक नहीं करता, तो प्रवृत्ति नहीं बनेगी, और दोनों की शक्ति जो है लगाई जाती है उनमें, जो माता है ना वो बताया वाचा की देवी है, वाचा की देवी माने है, वाचा चलाने वाली या बुद्धि ज्यादा चलाने वाली, बुद्धि तो शरीर का अंग नहीं है, और वाचा, वाचा देह का अंग है, तो देह अभिमान वाली हुई या आत्मा अभिमान वाली हुई, देह अभिमान वाली हुई, तो वो उसमें प्रवेश करता है तो उसके द्वारा है किसमें प्रवेश करता है, बाप तो कहते हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप, जो हिम्मत करेगा मैं उसको आगे कदम बढ़ा करके सहयोग दूंगा, तो पहले पहले वो हिम्मत करती है, किस बात की हिम्मत, दादा लेखराज के साक्षात्कारों को सुनाने की हिम्मत है, जो तीसरी माता दूसरी माता थी ना उसमें भी हिम्मत नहीं, वो डरती थी, क्या क्यों डरती थी है? क्यों डरती थी, क्योंकि वो इतनी बड़ बोली नहीं थी, फॉलो करने वाली थी या जवान चलाने वाली मुकाबला करने वाली थी नहीं, तो बताया कि उस बड़ बोली माता में प्रवेश किया और साक्षात्कारों को वाचा के द्वारा सुनाया, तो जिसने सुना वो हो गया, सुनने के साथ समझेगा भी या नहीं समझेगा, समझता भी, तो वो हो गया सुनने वाला भी और समझने वाला भी है, ज्ञान को सुनने में भी अब्बल लंबर और सुनाने में भी अब्बल लंबर, तो उसको कहेंगे ज्ञानी तू आत्माओं का इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाला हीरो पार्टधारी बाप, वो जगत पिता हो गया और माता कौन हो गई, हाँ वो जगत माता हो गई, और साथ में जो तीसरी मूर्ति बैठी हुई थी ना, मैं तीन के बीच में आता हूँ अकेले नहीं आता हूँ, तो तीसरी कौन थी, तीसरी वही माता, कौन जो बोलती कम थी लेकिन बुद्धि से सोचती समझती ज्यादा थी।
हाँ,
और जिसने जीवन भर उस राम बाप की आत्मा को धारण किया था,
क्या
सात्विक हो तब भी धारण किया, षष्ठी के आदि के जन्म में भी धारण किया और षष्ठी के अंत के जन्म में भी, आदि सो अंत में भी धारण करती है, लंबे समय तक निभाती है या नहीं निभाती, अंत तक साथ देती कि नहीं देती, देती। तो बताया कि वो तीसरी जो आत्मा है वो भी माता है, जिसे कहते हैं वैष्णो देवी, और वो वैष्णो देवी में क्या दिखाते हैं है? यादगार में वैष्णो देवी का मंदिर है ना, अमरनाथ के मंदिर के नीचे सबसे पहले कौन सा मंदिर है, वैष्णो देवी, तो वहां भी तीन लिंगियां दिखाते हैं है? माता है ना, कि पुरुष रूप लिंग है नहीं, लिंगी है, तो वो तीन लिंगियां कौन कौन है, वैष्णो देवी कही जाती है, विष्णु देवता तो नहीं कहा जाता, नहीं दिमाग में आया, अरे शास्त्रों में लाया हुआ है कि तीन देवियां वो प्रसिद्ध हैं, अम्बा माने जगदम्बा, अंबिका माना पार्वती और अम्बालिका, अम्बा की क्या बालिका कौन हुई, ओम राधे सरस्वती, तो ये तीनों के स्वभाव संस्कार मिलकर के एक हो जाते हैं हा? और वो दादा लेखराज ब्रह्मा के साथ मिलकर के संगठन पक्का बना लेते हैं। तो वो जो पक्का संगठन बनता है तो क्या जो पांचवा मुख है ब्रह्मा का, जिसे दिखाया ऊर्ध्वमुखी है, ऊर्ध्वमुखी माने हाँ, सुप्रीम सोल बाप की तरफ या दुनिया की तरफ, बाप की तरफ, तो उस बाप की तरफ उन माताओं में से कोई माता है, चार मुखों वाली माताओं में से, जो देह से तो भले सहयोग निभाती है, किसके साथ, उन चारों मुखों के साथ, लेकिन बुद्धि मन जो मन बुद्धि है ना, आत्मा वो किसके साथ रहती है, हा वही जगत पिता के साथ, तो असली जगदम्बा कौन हुई है, मन बुद्धि से जो साथ रहे आदि से लेके अंत तक, वो साथ ही सच्ची पक्की हुई, या जो देह से साथ निभाए लेकिन मन बुद्धि से क्या हो जाए, विचलित तो हो जाए, दादा लेखराज ब्रह्मा के ऊपर क्या हुआ, दादा लेखराज ब्रह्मा जैसे उसका बच्चा हो गया, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा किसका बच्चा हो गया, वो भी जगदम्बा का बच्चा हुआ कि नहीं, तो वो अम्मा है देवान वाली, तो वो बच्चे की तरफ आकर्षित हो गई, अब जब आकर्षित हो जाती है तो उसके पीछे पीछे उसको भी देहधारिणी जो बताई जाती है कौन, जिसे पार्वती कहते हैं, जिसे अंबिका कहा गया शास्त्र में, तो वो भी साथ तो रहती है देह से, ऐसे नहीं कि बुद्धि से साथ छोड़ देती, साथ रहती है कि नहीं, साथ रहती है, तो उसका विरुद्ध पक्का है, क्या किसके साथ रहेगी है? जो बाप समझाते हैं, क्या समझाते हैं बाप, क्या कहते हैं, तुम संग खेलूं, तुम संग खाऊं, तुम संग साथ श्वास निभाऊं, है ना। तो एक जन्म की बात या जन्म जन्मांतर की बात? जन्म जन्मांतर की बात है। तो बताया कि उड़ती कला में तुम जो जाते हो, उस उड़ती कला में ले जाने वाली आत्माओं में कोई सबसे ऊंची ऐसी आत्मा है जो भारत को सबसे आगे आकर के डूबती कला से उठती कला में ले जाती है। कौन है? बताओ। अरे बाबा कहते हैं जो शास्त्रों में नाम है वो काम के आधार पर है, तो कौन है? पार्वती नाम है ना, है? शंकर को जगत पिता कहते हैं, पार्वती को है? पार लगाने वाली कहते हैं। तो सारी दुनिया को पार लगाने वाली या किसी को छोड़ देने वाली? सारी दुनिया में जगत पिता भी आएगा कि नहीं? जगत पिता माने भारत, भा माने ज्ञान की रोशनी, रत माने लगा रहने वाला। तो ज्ञान की रोशनी में जो लगा रहने वाला है उसको भी पार लगाती है। कौन सी पावर से है? वही वही पवित्रता की पावर। कौन सी पवित्रता है? जिसकी बुद्धि में कोई दूसरा प्रवेश नहीं कर पाता, दूसरे की तरफ आसक्त नहीं होती। तो बताया कि वो परम पवित्र माता हुई ना, है? स्त्री शोला है तो माता तो बनेगी ना? नहीं। हाँ, तो बताया कि तुम जो बच्चे हो तुमको फख्र होना चाहिए, है? अपने आत्मा का पार्ट का पता चले तो फख्र होना चाहिए ना कि मैं कौन सी आत्मा हूँ। अरे मैं वो आत्मा हूँ जिसके लिए ये गायन है, क्या? नाम के आधार पर काम, पार्वती, सारे संसार को पार लगाने वाली। तो नशा चलेगा कि नहीं? हाँ नशा चलेगा, फख्र होना चाहिए, क्योंकि एम ऑब्जेक्ट तुम्हारा रखा हुआ है ना, ये लक्ष्मी नारायण के चित्र में एम ऑब्जेक्ट है ना, तो एम ऑब्जेक्ट को देख करके भी तो जरूर फख्र होना चाहिए। क्या फख्र होना चाहिए? कि ये जो एम ऑब्जेक्ट है ना बाबा की पढ़ाई का, बाबा की पढ़ाई रूहानी पढ़ाई है ना, उस रूहानी पढ़ाई में जिन रूहों ने पढ़ करके ऊंचे से ऊंचा पद पाया है उसमें हमारा ये एम ऑब्जेक्ट है। तो सबसे जास्ती नशा किसको चढ़ेगा? है किसको चढ़ेगा? लक्ष्मी नारायण को। लक्ष्मी का नाम पहले और नारायण का नाम बाद में। माना नशा करने की शुरुआत भी जब होगी ना तो पहला नशा किसको चढ़ेगा? लक्ष्मी को जो नशा चढ़ेगा वो नारायण को उतना नहीं, नारायण लक्ष्मी के द्वारा फिर नारायण को नशा चढ़ेगा। तो बताया तुमको फख्र कहता है, नहीं तो तुम्हारी ये एम ऑब्जेक्ट है, और वो एम ऑब्जेक्ट सुनी भी है, नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनते हैं। सुनी है कि नहीं? सुनी है। और फिर उसमें भी कथा किसी भी गाई जाती है, सत्य नारायण की कथा गाई जाती, सत्य लक्ष्मी की कथा गाई जाती है। क्यों क्यों नहीं गाई जाती है? क्योंकि सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली जो भी आत्माएं हैं, ऑलराउंड पार्ट बजाने वाली भी हैं कि नहीं? हाँ, जो भी बीज रूप आत्माएं हैं उनके बीच में सच्ची सच्ची आत्मा अब्बल लंबर कौन है? कौन? एक अक्षर लिखो, नारायण। नारायण की पहचान हुई है किसको? पहले पहले किसको होती है? अब्बल नंबर पहचान किसको होती है? लक्ष्मी, आदि लक्ष्मी को। लक्ष्मी नामधारी तो बहुत है सचिव में, पीढ़ियां चलती है ना लक्ष्मी नारायण की गद्दी की। हाँ, जैसे किंग एडवर्ड फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऐसे ही सचिव में देवात्माओं की भी पीढ़ियां चलती है। तो नंबर वार लक्ष्मी नारायण तो बनेंगे ना गद्दी के छीन। हाँ, तो बताया कि ये हम ऑब्जेक्ट जो तुमने सुनी है, और शास्त्रों में वो कथा भी गाई हुई है। कथा कहानियां कहाँ की है? यादगार संगम, पुरुषोत्तम संगम की यादगार। तो सत्यनारायण की कथा और उसकी उसका अर्थ ही क्या है? क्या अर्थ है सत्यनारायण की कथा? इस झूठ की दुनिया में इस झूठ की दुनिया में कलह कलेश की दुनिया में, कलयुग है ना, तो कलयुग की दुनिया में कलह माने झगड़, इस झगड़े की दुनिया में सत्य और असत्य का युद्ध होता है। क्या? सत्य और असत्य, तो कौन जीतेगा? विजय किसकी होती है? आखिरी विजय तो सत्य की होती है ना। तो वो 100% या नंबर वार, सत्य भी 100% भी होता है और नंबर वार भी सत्य होते हैं। तो किसकी विजय होगी? जो 100% है सच्चा साबित होता है उसकी कथा बनती है सत्यनारायण की कथा। इसका मतलब लक्ष्मी 100% नहीं हुई। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा नामधारियों में जो चौमुखी चार मुखों वाला ब्रह्मा है ना, उस संगठन में कुछ न कुछ गई है या नहीं गई है? है? कि पूरा ही सपोर्ट किया है? जो 100% सत्य होता है उसको नहीं किया ना। चंद्रवंश में चली गई, चंद्रवंश में जाके जन्म लिया तो परवरिश भी वहां लेनी पड़े ना। कन्या का चोला है तो परवरिश तो लेनी पड़े। तो बताया उसका अर्थ ही है सत्यनारायण का। क्या? कैसा नारायण? नारायण नामधारियों में जो भी हो उनमें अव्वल नंबर 100% सत्य का पाठ बजाने वाला और झूठों के साथ युद्ध करने वाला। तो क्या बताया? बाबा ने तो बता ही दिया, बच्चे इस दुनिया में सारी दुनिया तुम्हारा क्या बनेगी? सारी दुनिया तुम्हारा दुश्मन बनेगी। क्या? हाँ, ये है, कोई लंबे समय तक साथ निभाएंगे और कोई बीच में ही धोखा दे चले जाएंगे और विधर्मियों से मिल जाएंगे, दुश्मनों से मिल जाएंगे और वो टक्कर लेंगे। तो बताया इस सत्यनारायण की कथा का अर्थ ही है। सत्यनारायण का अर्थ हुआ ना क्या? झूठ के साथ युद्ध करके सारे संसार के बीच में सत्य साबित होना। कैसे? जितने भी नरम नाम के मनुष्य हैं, नर माने मनुष्य इंसान, उन नर से नारायण बनने की कथा, अव्वल नंबर में जो नारायण बनता है उसकी कथा। अभी तुम सच सच नर से नारायण बनने की कथा सुन रहे हो। क्या? सच सच नर क्यों लगा दिया है? माना भले शिव बाप तीन मूर्तियों के बीच में तीन मूर्तियों के साथ आते हैं, लेकिन उनमें सच सच एक ही होगा, पूरा टोटल 100% सच है कि तीनों होंगे है? तो सच सच नर से नारायण बनने की कथा ये तुम सुन रहे हो। गीता की, गीता को कथा कहेंगे ना, गीता को कथा सुन कहते हैं ना। तो ये देख करके एम ऑब्जेक्ट और प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़ते हुए पुरुषार्थ में कि बाप कहते हैं कि ऐसे बनने चाहते हो, कैसे है? कैसे बनना चाहते हो? इस झूठ की दुनिया में है, है? सच बनना चाहते हो? अब्बल नंबर। अच्छा, अब्बल नंबर ना सही तो दूसरा नंबर ले लो। नहीं, अच्छा तीसरा नंबर ले लो है? पास विद ऑनर तो हर फर्स्ट क्लास से भी ऊंची स्टेज है ना, पास विद ऑनर। वो तो आठ बनेंगे ना, तो नंबर ले सकते हैं ना। हाँ, तो ऐसे बनना चाहते हो? हाँ, ऐसे बनना चाहते हो दो बन, और जो बनेंगे ऐसे तो ऐसे के साथ ही रहेंगे, साथ ही निभाएंगे जन्म जन्मांतर, या दो करेंगे साथ ही निभाने वाले। तो बनना चाहते हो है? क्योंकि ये तो बच्चे जानते हैं है? कि इनकी माला बनी हुई है संगठन रूपी, किनकी है? जो ऐसे बनना चाहते हैं, और बनने चाहने के लिए पुरुषार्थ भी ऐसा ही फॉलो करते हैं, फॉलो करके तो बताया इनकी माला बनी हुई है। अब्बल नंबर माला, पहले पहले इनकी माला बनती है कि कोई दूसरों की? पहले पहले आठ की माला बनती है। राजधानी तैयार होगी तो राजधानी में कितनों का संगठन होगा? पहले पहले आठ का संगठन होगा। तो ये डायनेस्टी की माला है, इनकी माला बनी हुई है। ये कोई दो नहीं है, है? लक्ष्मी और नारायण। क्या कहा? चंद्रवंशी तक ये डायनेस्टी वृद्धि को पाती रहती है। माना ये जो सूर्यवंशी डायनेस्टी बाप आकर स्थापन करते हैं, ये कब तक इनकी संख्या बढ़ती रहेगी? जब तक है त्रेता युग शुरू हो और चंद्रवंश की शुरुआत हो, तब तक ये डायनेस्टी वृद्धि को पाती। पहले एक होगा है? दो होगा, तीन होगा, चार होगा, बढ़ते जाएंगे ना। सतयुग में नारायण बढ़ेंगे और नारायणों की जो प्रजा है वो बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी, बढ़ते जाएंगे। पांच होगा, छह होगा, ऐसे ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो ऐसे नहीं कि कोई एक लक्ष्मी नारायण बनते हैं, नहीं, एक लक्ष्मी नारायण नहीं बनते हैं। यूं कोई की बुद्धि में भी नहीं है क्या कि एक लक्ष्मी नारायण की कथा गाई जाती है और मंदिरों में एक ही लक्ष्मी नारायण दिखाए जाते हैं, दूसरे लक्ष्मी नारायण तो नहीं दिखाए जाते? अरे उनकी बुद्धि में ही नहीं है तो दिखाएंगे कहां से मंदिर बना के? दिखाएंगे नहीं, तो उनकी कोई की बुद्धि में भी नहीं है। ये तो सूर्यवंशी डायनेस्टी होगी। क्या सूर्यवंशी डायनेस्टी होगी? इनके पीछे भी गद्दी पर बैठने वाले होंगे। हाँ, तो ये तो कोई मनुष्य जानते ही नहीं है। हम गोया कुछ नहीं जानते, जबकि तुम बच्चों को ये मालूम पड़ा है। क्या बाप का क्या मालूम पड़ा है? बाप का क्या मालूम पड़ा? अरे सारा ज्ञान मालूम पड़ा ना, सारी कथा, सारी हिस्ट्री मालूम पड़ी ना बाप की। बाप खुद भी कहते हैं ना, मेरे द्वारा तुम मेरे बच्चे, मेरे बच्चे मेरे को जानेगा, जानकर पीछे बाप को जानने के साथ फिर मेरे द्वारा ही सब कुछ जान जाते हो। कौन सा बाप कहते हैं? वेद के बाप तो दो बताए, एक मनुष्य सृष्टि का बाप और दूसरा वो बाप जो सब बापों का बाप है, जिसका कोई बाप नहीं है। तो किसको जानने से तुम सब कुछ जान जाते हो? है। किसने कहा मेरे को जान करके पीछे बाप को जानने के साथ फिर मेरे द्वारा ही तुम सब कुछ जान जाते, बाकी कुछ भी जानने को रहता नहीं है। क्षेत्र, क्षेत्र क्या, क्षेत्र माने शरीर, क्षेत्र माने खेत, स्थान जिसमें बैठ करके आत्मा पाठ बजाती है, जिसमें जिस खेत में जिस स्थान में आत्मा जिस घर में प्लॉट में रहा जाता है ना, मनुष्य शक्ति का बाप की बात बताई कि बाप खुद भी कहते हैं ना, मनुष्य शक्ति का बाप खुद भी कहते हैं, क्या कहते हैं, मेरे द्वारा मेरे को बच्चे जान करके, मेरे द्वारा मीडिया कौन हुआ, मनुष्य सृष्टि का बाप, मेरे को बच्चे जान करके, जब तक मेरे को नहीं जानेंगे, मेरी हिस्ट्री पूरी नहीं जानेंगे, क्या मेरे को जानना का मतलब क्या, सिर्फ ये जान लेना कि बिंदी नहीं, वो बिंदी आत्मा भी 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है, वो भी जानना है कि नहीं, मेरे को जान करे पीछे बाप को जानने के साथ, कौन से बाप को जानने के साथ, सुप्रीम सोल बाप को बाद में पता चलेगा, पहले साकार शरीरधारी है ना, वो पहले किसको पहचानेंगे, शरीरधारी बाप को पहचानेंगे कि निराकार को पहचान लेंगे, पहले शरीरधारी बाप को पहचान, तो बाद में आत्माओं के बाप को जानने के साथ फिर मेरे द्वारा ही, क्या द्वारा माने मीडिया, फिर भी किसको बताया, ऊपर वाला मीडिया नहीं बनता, सुप्रीम सोल मीडिया बनता है नहीं, मेरे द्वारा ही सब कुछ जान जाते हैं, सब कुछ जानना माने सारा ज्ञान का अखूट भंडार बच्चों की बुद्धि में आ जाता है, क्या सब कुछ माने फिर जानने का कुछ भी रहता ही नहीं, बाकी बताया कि इनके ऊपर कोई पढ़ाई है नहीं, जो पढ़े किनके ऊपर, इनके कहकर किसी तरफ इशारा किया, इनके माने एक या कई मुख, दो मुख, अरे ये जो चार मुखी वाले ब्रह्मा हैं, इनकी तरफ इशारा किया, संगठन बना के बैठे हैं, हैं? इनके ऊपर कोई पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई किसके ऊपर है, पढ़ाई एक के ऊपर है, है जो पढ़े, कौन पढ़े, एक पढ़ता है या चारों इकट्ठे पढ़ते हैं, है? या आठों इकट्ठे पढ़ते हैं, जिनकी राजधानी तैयार होती है पहले, संगठन तैयार पहला होता है, फिर एक पढ़ता है, तो कहेंगे इस पुरुषोत्तम संगम युग पर जो ऊंचे ते ऊंचे युग है, ये है सबसे ऊंचे ते ऊंची पढ़ाई, और कोई युग होता ही नहीं है, न सतयुग त्रेता का संगम, न त्रेता द्वापर का संगम, न द्वापर कलयुग का संगम, न द्वापर कलयुग का जो संगम 1250 वर्ष पहले हुआ था ना, वो भी नहीं, सबसे ऊंचे ते ऊंचा युग कौन सा, पुरुषोत्तम संगम, कलयुग का अंत और सतयुग के आज में ऊंचे ते ऊंचा बाप जिसका कोई बाप नहीं, वो सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर आकर के जो ऊंचे ते ऊंचे पढ़ाई पढ़ाते हैं, हैं? वो किसके ऊपर पढ़ाई पढ़ाते हैं, जिसके घर घर में कथा गाई जाती है, जीवन कहानी सुनाते हैं। बेचारे जानते नहीं है असली जीवन कहानी, वही लीलावती कलावती लगा सुनाई देते हैं, लेकिन गाते तो है ना सत्यनारायण की कथा, चौपड़ी के ऊपर तो लिखाई हुआ है ना, क्या सत्यनारायण की कथा। तो वो ऊंचे थे ऊंची पढ़ाई इनके ऊपर, किनके ऊपर, ये चार मुखों वाले ब्रह्मा के ऊपर नहीं है, किसके ऊपर है, है? एक सत्यनारायण के ऊपर है। ओम शांति।